थिंकिंग हैट्स, ये सिक्स थिंकिंग हैट्स क्या है? जब भी जीवन में कोई समस्या हो, दुख हो, प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो, हर्डल्स हो, ऑब्स्टेकल्स हो, बैरियर्स हो, विघ्न हो, परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, एनीथिंग और एनीथिंग दैट सडनली कम्स इन लाइफ एंड दैट टेंड्स टू हर्ट यू, इन दैट सिचुएशन, इन दैट सर्कमस्टांसेस यू हैव टू डू समथिंग. देयर इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक प्रोपाउंडेड लॉन्ग बैक बाय एडवर्ड डी बोनो, दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन. उसने ये एक टेक्निक निकाली. इसमें सिक्स थिंकिंग हैट्स है, छह अलग अलग प्रकार की टोपियां. जब कोई परिस्थिति आ जाए, सबसे पहली टोपी है, ये छह रंग है, इनको ध्यान रखना है. सबसे पहली है व्हाइट हैट. व्हाइट हैट का मतलब है परिस्थिति क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट आर द फैक्ट्स, जो अवेलेबल है आपके पास उस आ जाएगा व्हाइट हैट. ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे हम धीरे धीरे. दूसरा है रेड हैट. रेड हैट मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं क्या क्या होगी उस सिचुएशन के लिए, वो है रेड हैट. फिर है ग्रीन हैट. ग्रीन हैट अर्थात क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या क्या हो सकती है उस सिचुएशन में, दैट इज ग्रीन हैट. नेक्स्ट है ब्लैक हैट. ब्लैक हैट मतलब डिफिकल्टीज या निगेटिविटी, वो जो सिचुएशन है उसमें क्या क्या निगेटिव है उसके बारे में सोचना, दैट इज ब्लैक हैट. फिर उसके बाद में ब्लू हैट. ब्लू हैट मतलब एक्शन प्लान. अभी आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, कैसे इसको आप इनेक्ट करेंगे. ये जो फर्स्ट ग्रुप है, हाथ खड़ा करेंगे फर्स्ट ग्रुप. अभी आपको हम एक सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग, इतने लोग ठीक है, पिकनिक के लिए गए बस में, ठीक है, और पिकनिक में जाने के बाद आते समय बस का टायर पंचर हो गया. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको एक ड्रामा बनाना है अगले पांच मिनट में. बस ड्रामा ऐसा बनाना है कि जिसमें ये छह थिंकिंग हैट यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दे रहा, व्हाइट हैट है आपका फैक्ट, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, ये है इंफॉर्मेशन, सूचना, फैक्ट, जो सिचुएशन है उसको आपने सामने रखा, तो ये पहनी व्हाइट हैट. फिर है रेड हैट. रेड हैट में फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे किसी को डर लग रहा है अभी क्या होगा, रात हो गई हम घर कैसे पहुंचेंगे, फीलिंग्स. ठीक है, तो किसी को आप में एक्टिंग करनी होगी या बोलना पड़ेगा फीलिंग्स के विषय में, ये पहला होगा. दूसरा है ग्रीन. फिर दूसरा कोई आएगा, फिर वो क्रिएटिव सोचेगा कि नहीं चलो गाड़ी पंचर हो गई, कोई गैरेज है क्या, कोई मैकेनिक है क्या, क्रिएटिव सोचेगा. ठीक है, फिर येलो. तो येलो, येलो के लिए कोई ना कोई बोलेगा. येलो मतलब अभी सिचुएशन में बेनिफिट क्या है, सिचुएशन तो बहुत खराब है वैसे, पर बेनिफिट ये सोचेंगे चलो हमको एक अवसर मिला, तो अभी जब तक कोई मैकेनिक ना आ जाए हम कोई खेल खेलते हैं वहां पर, कुछ और करते हैं, तो दैट इज फाइंडिंग द बेनिफिट. फिर है ब्लैक. डिफिकल्टीज, अरे बाप रे, चुप लगे तो डर क्रिएट करना है, तो ये सब मिलके आपको माइक दिया जाएगा और अगले पांच मिनट में आप अभी मिलके डिस्कस करो. और फिर है ब्लू हैट. फिर आपने फाइनल एक्शन प्लान क्या किया, ये सिचुएशन आपको मिली है, आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, आपने क्या फाइनल एक्शन प्लान लिया, इसके बारे में सोचना है. स्टार्ट ग्रुप टू. ग्रुप टू के विषय में, आप हॉस्पिटल में नर्सेस है, ठीक है, आईसीयू में, आईसीयू में नर्सेस है, और आपको फोन आता है कि एक इमरजेंसी पेशेंट एडमिट करना है. किसी से फोन आया कि मेरे पिताजी बहुत सीरियस है, मैं आपको उधर लेके आता हूं, पर आईसीयू में एक भी बेड खाली नहीं है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, उसमें आपको ये सारी क्या यूज करनी है. रेड हैट, ग्रीन क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, येलो हैट फायदा क्या क्या है, ब्लैक डर, निगेटिविटी, और फिर ब्लू हैट एक्शन क्या करेंगे. सेकंड ग्रुप. थर्ड ग्रुप, ये वाला ग्रुप. थर्ड ग्रुप, आप जहां रहते हैं अचानक वहां पर अर्थक्वेक आ गया. इस अर्थक्वेक में बहुत सारे घर गिर गए हैं आसपास के, अभी आप क्या करेंगे? आप लोग इतने नर्सेस हैं वहां पर, तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे कुछ हो रहा है वहां पे, कैलमिटीज है. हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन, स्टार्ट डिस्कसिंग एंड यूज ऑल दीज हैट्स. एक एक हैट यूज करेगा. नेक्स्ट ग्रुप, आप किसी हॉस्पिटल में नर्स है, ठीक है, वहां का जो एक पेशेंट है उसको आपके किसी एक साथी ने गलत इंजेक्शन दे दिया और वो पेशेंट की डेथ हो गई. अब सारे रिलेटिव आपके पास आए हैं और झगड़ा कर रहे हैं. हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन? यूज ऑल द सिक्स कैप्स, हैट्स. वेरी टफ सिचुएशन, पर हाउ विल यू मैनेज? डिस्कस करो आपस में क्या करेंगे. उसमें सारी पॉइंट्स आनी चाहिए ये. नेक्स्ट ग्रुप, आपका एक दोस्त है, ठीक है, योर फ्रेंड. सडनली उसके पिताजी की डेथ हो गई. नाउ यू हैव टू गो टू हिम एंड ही हैज गॉन इन डिप्रेशन. एकदम डिप्रेशन में चला गया. अब आप ये सारी कैप्स यूज करके उसको कैसे ठीक करोगे, इसके विषय में चिंतन करना है. स्टार्ट डूइंग. नेक्स्ट ग्रुप, आपका एक दोस्त है, साथी, जो इंटरव्यू में फेल हो गया या एग्जाम में फेल हो गया. नाउ ही हैज गॉन इन डिप्रेशन. नाउ हाउ यू विल हैंडल दिस सिचुएशन? बाय यूजिंग ऑल दिस कैप्स. उसमें थोड़ा निगेटिव भी आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो पहले से पढ़ाई नहीं करता था, हमको पता था ये फेल होगा, ये हो गया निगेटिव एस्पेक्ट. बट यू हैव टू यूज पॉजिटिव, क्रिएटिव फीलिंग, फैक्ट्स, एक्शंस. ठीक है, स्टार्ट. नेक्स्ट ग्रुप, हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए. उनकी मांगे है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ. अब सारा हॉस्पिटल का काम, एक वार्ड है पीडियाट्रिक्स वार्ड, वो आपको हैंडल करना है. हाउ विल यू यूज ऑल द सिक्स कैप्स? डिस्कशन स्टार्ट. हाउ विल यू मैनेज? ये हो गया नहीं? हाँ, या क्या क्या? हाँ, नेपाली में बोल सकते हैं. नेपाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, कोई भी लैंग्वेज चलेगी, प्रोवाइडेड यू नो इट. अच्छा, ये ग्रुप बाकी है. तो आपको, हाँ, आपका एक दोस्त है, ठीक है, एक नर्सिंग स्टूडेंट. सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट गया एंड एम्पुटेशन करना पड़ा. Now he has gone in depression. How will you convince him? How will you see this situation and what will be your action plan? Use all the six caps. Next, last group. आपको आसान चाहिए या टफ चाहिए या इजी? इजी. आप एक वार्ड में काम कर रहे थे, ठीक है, और सडनली आपके इंचार्ज ने आपकी 15 दिन के लिए नाइट लगा दी, नाइट ड्यूटी 15 डेज, और मोस्ट पीडियाट्रिक्स वार्ड, सबसे बिजी वार्ड में. हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन? स्टार्ट डिस्कसिंग. और भी माइक है? माइक, एक्स्ट्रा माइक्स, एक दो और भी है, तीसरा. सबको बोलना पड़ेगा, एक नहीं, सब बोलेंगे, सब एक एक को एक एक हैट के बारे में बोलना पड़ेगा. स्टार्ट. कोई पॉजिटिव पॉइंट बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, कोई क्रिएटिविटी बोलेगा, कोई एक्शन प्लान बोलेगा, कोई ग्रुप लीडर बन जाएगा, कैसे भी आप देखो कैसे करना है. हर एक को बोलना पड़ेगा. पर लास्ट टू मिनट्स, फास्ट, लास्ट वन मिनट. ये टाइम अप. स्टॉप. ग्रुप नंबर वन, कम ऑन द स्टेज. ग्रुप नंबर वन, सब लोग इधर देखेंगे. ग्रुप नंबर वन फर्स्ट, कोई आवाज नहीं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आ जाओ चलो। एक रेड कैप पहन ले कोई, तो फीलिंग्स वाला चलो जल्दी, रेड कैप, येलो कैप कौन पहन रहा है? नेक्स्ट ब्लैक कैप, निगेटिव एस्पेक्ट, येलो कैप पॉजिटिव एस्पेक्ट, ब्लू कैप एक्शन प्लान, और व्हाइट इज सिट। तो आप अपने आप चालू करेंगे आपकी क्या सिचुएशन है। दो माइक ले लीजिए, आप अपना सिचुएशन और फिर सिचुएशन को हैंडल करो। स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, इधर आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ, ये इधर कर दीजिए, चालू है। हाँ ऑन कर
दीजिए,
ला गाडी मी मिळावती मामे उमय कोट ना साडी बस होय तर कुठे हिरो होतो मला मॅमे गाडी म्हणून म्हणजे अम्मा मम्मा मम के म्हणणे माझं आम्ही साथी हो सुरमाचा अब हामी चाहिँ वाडे मॅमला फोन गरी इन्फॉर्म गरौँ अनि त्यसपछि त मॅमले हुन्छ अनि पछि त टेन्सनै भएन नि बरु अब हामी यताउति कुनै ग्यारेज छ कि गएर खोजौँ न तपाईँ जान एकैचोटि नजा आधी चाहिँ हामी गाडी खोज्दैछौँ आधी चाहिँ यही बसेर अन्ताक्षरी खेल्दै गरौँ न त ला मलाई त डर लागिसक्यो यहाँ अगाडि जङ्गल पनि छ जनावरहरू हुन्छ अरे आयो भने बेलुका भइसक्यो साथीहरू अब गाडी खोज्नुको लागि ग्यारेजहरू नखोजौँ लोकल बस आयो अब गाडीमा जाउँ जाउँ न त जाउँ लु जाउँ जाउँ छिटो जाउँ
हुन्छ हामी जाने अब
हुन्छ हामी जाने
हमें गैरेज ढूंढना पड़ा, हमें गैरेज नहीं मिला, बहुत साथ हो गया था इसीलिए लोकल बस आए और हम लोग लोकल बस में चढ़ के आ गए। होइन अनि मतलब बाहिरबाट इमर्जेन्सी पेसेन्ट आउँछ होइन ऊ चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी हुन्छ र आइसियुमा सिफ्ट हुने हुन्छ तर आइसियुको चाहिँ कुनै पनि बेडहरू खाली हुँदैन। ला के गर्ने होला आइसक्यो पेसेन्ट बेड पनि खाली छैन सबै पेसेन्टहरू इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हुनुहुन्छ कुनै पनि पेसेन्टलाई अहिले इमर्जेन्सी डिस्चार्ज गरेर अब अर्को पेसेन्ट आइन त गर्न मिल्दैन तर पनि एकचोटि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने रहेछ
हामीले अहिले यसरी याद हुँदैन नि त हामीले त पेसेन्टको लाइफलाई सेभ गर्नुपर्छ हामीले ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ सिचुएसनलाई कसरी ट्याकल गर्ने त
कसरी गर्ने त अनि अब म्यानेज गर्न पनि अब कसरी गर्ने
यसो गर्नु पर्ला नि त साथीहरू
डक्टरलाई फोन गर्नुपर्छ अनि इमर्जेन्सी के आइसियुबाट चाहिँ जो पेसेन्ट अगाडि नै एडमिट हुने डिस्चार्ज हुन हुने खालको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब अर्को जेनरल अनि डक्टरलाई सोधेर जेनरल गर्न लगाएर लागि पर्मिसन मागेर अनि सिफ्ट गरेर चाहिँ नयाँ इमर्जेन्सी पेसेन्ट चाहिँ रिसिभ गरेर उसलाई अब के गर्ने हो इसिजीहरू गरेर त्यस पछाडि के एक्सन गर्ने हो त्यसहरू गर्दा हुन्छ
हुन्छ त्यही गरौँ न त त्यही गर्दा नि हुन्छ राम्रो छ त साथी
फाइनल चाहिँ हाम्रो अब इमर्जेन्सीबाट
आउँदैन सबसे सुरुमा डक्टरले कल करेंगे उसके बाद जो पेसेंट होता है नॉर्मल उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए पूछेंगे उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट करेंगे
जिस पेशेंट को शिफ्ट करने जा रहे थे वो पेशेंट अनकोऑपरेटिव भी हो सकते थे ना अनि उस समय चाहिँ वो पेशेंट को और विजिटर को चाहिँ हम बताएंगे कि सिचुएशन के बारे में
हाम्रो चाहिँ हाम्रो भागमा चाहिँ सरले भन्नुअनुसार हाम्रो भागमा चाहिँ ढिलो आएर 15 दिनको ड्युटी नाइट ड्युटी फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो नर्स बनेको चाहिँ एकजना साथी ऊ चाहिँ नाइट ड्युटी ढिलो आएर उसलाई मैले म इन्चार्ज बनेर फेरि उसलाई चाहिँ 15 दिनको नाइट ड्युटी थपिदिएको छु
नमस्ते म्याम
नमस्ते तपाईँको कुन ड्युटी हो
म्याम नाइट
अनि नर्स भएपछि तपाईँको पाउँछ भन्ने चाहिँ छैन है 15 दिनको ड्युटी नाइट ड्युटी फेरि तपाईँलाई रिपिट गरिदिएको छ 15 दिन फेरि तपाईँको नाइट ड्युटी गर्नु पर्यो
म्याम त्यो बाटोमा आउँदै ढिलो भएको थियो नि ऊ हेर म्यामले नाइट ड्युटी अर्को हप्ता पनि राखिदिनु भयो भने चाहिँ अब के गर्नु म साथी हप्तै गर्नु सक्दिनँ है
साथी नडरा नडरा अर्को साथीसँग साटौँला नि
के भयो त अनि नाइट भएर राति मेडिटेसन गर्न पाइन्छ झन् धेरै एक्स्ट्रा नलेजहरू हुन्छ नि अनि दुई हप्ता त कसरी गर्नु नाइट एक हप्ता त म सक्दिनँ अब त तपाईँ के भन्छ गाह्रो हुने छ अब के झन् बिरामी हुन्छ होला सायद
अब चाहिँ अबतिरो यसो पनि मामले राखिहाल्नु भयो अब किनभने हामी सबैजनाको त नाइट ड्युटी होइन नि त यिनीहरूको मर्निङ छ उनीहरू हामी एक हप्ता हामी त नाइट ड्युटी गर अनि मर्निङ ड्युटीहरूसँग एक हप्ता चाहिँ साथमा त उनीहरूले गरिदिइहाल्छ नि एक हप्ता तिमीहरू सबैजना गर्दैछ नि उसको
गर्छु गर्छु
अब म्यामलाई के भन्नु
हामीले चाहिँ एक अब साथीलाई मर्निङ नाइट ड्युटी भइसके पछाडि अब एक हप्ताको नाइट ड्युटी चाहिँ उसले गर्छ र एक हप्ताको चाहिँ मर्निङसँग एक्सचेन्ज गर्छ
उसको हेल्थ अझ डिग्रेड हुन्छ अनि हेल्थ डिग्रेड हुन्छ मतलब अझ बिरामी हुन्छ झन् अगाडिदेखि बिरामी थियो झन् बिरामी हुन्छ मेडिकेसन गर्न पाइन्छ अझै एक्स्ट्रा नलेज हुन्छ हाम्रो ग्रुपको सिचुएसन भनेको चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको चाहिँ सबै डक्टरहरू चाहिँ स्ट्राइकमा जानुभएको छ, त्यही भएर हामीले पेडियाट्रिक वार्ड चाहिँ नर्सले मात्र पर्ने हुन्छ। लाला अब डक्टरहरू पनि हुनुहुन्न, के गर्ने होला, इमर्जेन्सी सिचुएसन आयो भने के गर्ने होला, अब डरलाइसक्यो नातिमा केही हुँदैन। अब हामीले पेसेन्टलाई इन्गेज गरेर राख्नुपर्छ, यदि इमर्जेन्सी कन्डिसन आयो भने चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी मेडिकेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले फेरि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पाउने चान्स पनि पाउँछौँ, अनि जस्तै पेसेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर आइपिआर पनि मेन्टेन गर्न पाउँछौँ नि। पाउन त पाउँछौँ, तर कति धेरै डर हुन्छ भने त साथै यदि रङ मेडिकेसन गयो, डोज पुगेन अथवा डोज बढी भयो भने त पेसेन्ट एक्सपायर हुनसक्छ, साथसाथै हस्पिटलको रेपुटेसन पनि त हामी नर्सहरूकै हातमा छौँ, त यसले गर्दा त हस्पिटलको रेपुटेसन पनि जान सक्छ। नै नै मलाई त धेरै डर लाग्छ। त्यसरी डराएर पनि त भएन नि, अब डक्टर हुनुहुन्न, हामी आफैले सबै म्यानेज गर्नुपर्छ। अब यदि चाहिँ जस्तै इमर्जेन्सी कन्डिसन आइहाल्यो भने जो डक्टरसँग चाहिँ हाम्रो आइपिए राम्रो छ, उनीहरूलाई चाहिँ फोन गरेर कुन चाहिँ मेडिसिन दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी सोधेर हामी गर्न सक्छौँ नि त। त्यही त्यस कारण नडर पनि हामी आफै म्यानेज गर्न सक्छौँ। ल ल अब हामी डक्टरहरू बिना जे पनि गर्छौँ, केयरफुली गरौँ न त। ओ त्यही गरौँ अब, त्यसै गरौँ अब। हामीले यो सोचाइ चाहिँ पेसेन्टको हामी इन्गेज रखेंगे, जो पेसेन्ट हो जो इमर्जेन्सी दबाई हमको जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके जिसका जिस डॉक्टर के साथ हमारा अच्छा आईपीआर हो, जिस डॉक्टर को अच्छे से चिंता होता है पेशेंट का, वो तो बताएंगे ना इमरजेंसी कंडीशन में। मैं हम फोन करके बोलेंगे कि इतने इमरजेंसी कंडीशन के हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर, और उसके बाद हम पेशेंट के जो विजिटर होते हैं उनको भी इंगेज रखेंगे, उनको पता नहीं चलने देंगे कि डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इतना मुश्किल सिचुएशन है, ऐसा करेंगे। उन लोगों को भी हम इंगेज रखेंगे तो अच्छे से कर नेगेटिव ये था कि कहीं हम पेशेंट की जान के साथ ना खेल जाएं, क्योंकि राइट डोजेस पता नहीं चलता, हॉस्पिटल का रिपीटेशन भी हमारे हाथ में होता है, उस वक्त हॉस्पिटल को तो कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हाम्रो सिचुएसन यो हो कि रेगुलर क्लासमा फर्स्ट आउने साथी चाहिँ अचानक फेल हुन्छ। एक्जाममा म त फेल भएँ यसपालि पनि, अब के गर्ने होला, मेरो बाबा आमाको सपना पनि अब सपनामै सीमित हुनु पर्यो, के गर्ने होला। केही हुँदैन, चिन्ता नगर न, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, तिमीले वे चेन्ज गर पढ्ने, एक घन्टा पढ्छ भने दुई घन्टा पढ ट्युसन सेन्टर जोइन गर, अनि पढाइ राम्रो भइहाल्छ नि, चिन्ता लिनै पर्दैन नि।
त्यसरी डराएर पनि हुन्छ त, त्यस्तो नभए न साथी, एकतालिको फेलियरले नि भनिन्छ नि, फेलियर बाटो फेलियर सक्सेस, तिमीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्यौ, फेलियर भनेको के हो भोग्यौ, यही फेलियरबाट अर्को तिम्रो सक्सेस हुन्छ। डर साथी केही हुँदैन, फेलियर भनेको त अपर्च्युनिटी हो साथी, अपर्च्युनिटी हो।
किन त्यसले
भनेको उसलाई के भयो त एकचोटि फेल भएर केही हुँदैन केही हुँदैन एकचोटि फेल भएर संसारमा त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जो एकचोटि फेल भएर पनि सक्सेसफुल भएका छन् तिमी त्यसरी डिमोटिभेट नहौ न बरु तिमीलाई हामी राम्रो ट्युसन सेन्टरमा लगेर एडमिसन गराउँछौ त्यस पछाडि तिमीले राम्रोसँग पढ्नेछौ जस्तै अब एक घन्टा पढ्छौ भने दुई घन्टा पढ्न सक्छौ तिमी रटेर पढ्छौ भने बुझेर पढ्न सक्छौ र जो चाहिँ पहिले पनि फेल भएका थिए र अहिले सक्सेसफुल भएका छन् त्यस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ तिमी कुरा गरेर इन्सपायर पनि त हुन सक्छौ तिमी टेन्सन नलेऊ
तिमी नडराउ क्या दिदीले अहिले जे नै भन्नुभएको छ त्यतै फलो गर ल
नडराउ हामी छौ तिम्रो साथमा एक्शन प्लान में हमने जो वो अगर वो एक घंटे पढ़ती थी तो उसके जो पढ़ने का ड्यूरेशन है टाइम है उसको हम इंक्रीज करेंगे और फिर उसे अच्छी ट्यूशन सेंटर में एडमिशन कराएंगे और फिर दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो फेलर बार बार फेलर होकर भी सक्सेसफुल है उस उन लोगों के साथ बात करा के उसे पॉजिटिव इंस्पायर कराएंगे और फिर थैंक यू
अभी डिस्कशन बंद व्हाइट हैट डिस्क्राइब द सिचुएशन सब अपनी अपनी कैप्स पहन लो और माइक ले लो एक्स्ट्रा माइक है वहां पर
हाम्रो सिचुएसन चाहिँ हाम्रो मिल्ने साथीको बाबा खस्नु भएको छ हुँदैन नि त अब एकचोटि जानिसकेपछि त यो संसार छोडेर त जानै पर्छ नि यदि तिमी नै यदि यसरी कमजोर भयो भने अरू तिम्रो परिवारको सदस्यले के हुन्छ तिमी नै त एउटा सहारा हो तिमी नै त एउटा अब उहाँहरूको जिउने बाटो बाटो नै हो होइन तिमी नै अब घरलाई जे जस्तो सपोर्ट गर्न सक्छौ तिमीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तिमी नै यसरी कमजोर भएर गयो भने त अरू सदस्यहरूको के हुन्छ भन त तिमीले यसरी कमजोर भएर होइन आफूले चाहिँ आफ्नो दृढ संकल्प गरेर आफ्नो जीवनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ आफ्नो बुवा खसेकोमा त्यसरी निराश भएर होइन उहाँले जे सपना देख्नु भएको छ त्यो सपनालाई चाहिँ साकार गर्नुपर्नेछ तिमीले साथी तिमीले अब यसरी लस भयो भनेर दुःख मात्रै मान्नु हुँदैन तिम्रो बुवाको जिम्मेवारीलाई तिमीले अब वहन गर्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ तिमीले अब आफ्नो बुवाको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ निभाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर तिमीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्न पनि बुझ्ने मौका पाएको छौ त्यही भएर तिमीले आफ्नो सिचुएसनलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ आफूमा चाहिँ एबिलिटीलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ
ला अब तेरो बाबा खस्नु मलाई मद्दत गर्छ पैसा कहाँबाट ल्याउँछ कसरी गर्छ सबै कुरा
साथी यसरी लिएर हुँदैन त के भन्छ तिमीलाई बाबा नै खस्नु भएको छ मम्मी हुनुहुन्छ तिम्रो घरको परिवारहरू हुनुहुन्छ तिमीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ त्यतिखेर अब तिमीले बुझ्छौ कि तिम्रो घर परिवारले तिमीलाई कति माया गर्नुहुन्छ कति सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर किनभने दुःखकै समयमा थाहा हुन्छ कि मान्छेले आफ्नो आफन्त काम लाग्छ भनेर त्यही भएर तिमीले चिन्ता नगर आफ्नो आफन्तहरूको सहयोग लिएर चाहिँ तिमी लाइफमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिक
हामी पनि छौँ तिम्रो लागि तिमीलाई केही सहयोग चाहियो भने हामीलाई भन्दा हुन्छ होइन केही पैसाहरू चाहियो भने हामी सहयोग गर्न सक्छौँ नि तिमीलाई
नगरौ साथी तिमीलाई तिमीलाई के भयो भने हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौँ नि
के अरे घरको कुनै गार्जेन नभए पनि उहाँको मम्मी अथवा उहाँको फ्यामिली मेम्बर्सहरू सँगै हुनुहुन्छ होइन
उहाँले को हेल्पबाट चाहिँ उहाँ लाइफमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ दुःखमा सबभन्दा बढी सहयोग गर्ने भनेकै आफन्त मान्छेहरू हो, उहाँहरूको हेल्पबाट तपाईँ चाहिँ आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई पोजिटिभ साइकोलोजीको सपोर्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ।
हाम्रो सिचुएसन चाहिँ एउटा हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो वार्डमा चाहिँ पोस्टिङ भएको छ र त्यो पोस्टिङको बेलामा चाहिँ हाम्रो साथीले चाहिँ पेसेन्टलाई गलत मेडिसिन चाहिँ दिएर चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ एक्सपायर हुनुभएको छ र अब त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ।
हेर्नु पेसेन्टलाई के भयो, गलत मेडिसिन भयो जस्तै छ। ला तैँले त गलत मेडिसिन दिइछस्, ला अब के गर्ने, ला अब के गर्ने, ला गलत मेडिसिन भयो, अब भिजिटर पनि आउँदैछ पेसेन्टको।
बाबु, ए बाबु, के भयो मेरो बच्चालाई यसरी कसरी हुन्छ, यो छ मैले छिट्टो मेरो बच्चा एक्कासी के भयो, तपाईँले गर्दा भयो सब
ल अब के गर्नु,
नडर है नडर, हामी इन्चार्जलाई भन्यौँ, पुलिसलाई भन्नु, ककरलाई भन्नुपर्छ, भन्यौँ केही हुँदैन।
नडर साथीहरू केही पनि हुँदैन होइन, जसरी अब हामीले यो सिचुएसनलाई हाम्रो हामीले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुपर्छ होइन, त्यसै गरी अब हामीले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डिल गरेर पछि आउने सिचुएसन कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ होइन, अनि हरेक कामहरू गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अलर्ट भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
ल अब भिजिटरहरू पनि लिँदैराख्नु भएको छ, तोडफो हुन थालिसक्यो, अब ला के गर्ने होला हामी, अब जे पनि हुनसक्छ, अब यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब जेल हामी जेल पनि पर्न सक्छौँ, हाम्रो साथीको लाइसेन्स रद्द पनि हुनसक्छ, कि त हस्पिटलै बन्द हुनसक्छ, ला अब के गर्ने होला, म त कति गर्न लागिसक्यो।
त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सनमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हस्पिटलको एडमिनिस्ट्रेटर इन्चार्ज अनि पुलिसहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गरिदिने सबैजना, अनि इन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ ग्रुप डिस्कसन गरेर चाहिँ त्यस पछाडि हामीले चाहिँ भिजिटर्सहरू अगाडि गरेर चाहिँ ट्रुथ कुरा चाहिँ भनिदिने, अनि त्यस पछाडि यदि त्यसको चाहिँ रियाक्सनमा चाहिँ यदि भिजिटर्सहरूले चाहिँ केही कुरा गर्नुहुन्छ होइन भन्ने चाहिँ केही कुराहरू भन्नुभयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सिचुएसनलाई चाहिँ कोप गरेर चाहिँ कामले चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो सिचुएसनमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन नपाउने हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ एज अ लो एज अ नर्स चाहिँ हामीले के कसरी त्यो सिचुएसन चाहिँ ह्यान्डल गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देखाउन गइरहेको छु। त्यही भूकम्प आएको बेलामा चाहिँ कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु,
के गरेको तिमीहरूले, कता भागेको, यता आउँछ सबजना भएर निकालेको मान्छेहरूलाई,
धेरै प्यानिकमा हो होइन हामीले आजसम्म जति पनि फर्स्ट एड म्यानेजमेन्टहरूको बारेमा नलेज पाएको छौँ त्यो नलेजहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा राम्रो मौका पाएको छौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर हामीले भिक्टिमहरूको लाइफ सेक्योर गर्न सक्छौँ
हामीले कसरी म्यानेज गर्ने केही सामान्य छैन त्यसलाई केही उपचार गर्ने त्यसको नि केही स्टिमुल छैन कसरी हामीले म्यानेज गर्ने त हामी त पर्छन् जस्तो लागिरहेको छ उनीहरूलाई कसरी गर्नु
हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्जुर्ड जुन पर्सनहरू चाहिँ इन्जुर्ड हुनुभएको छैन उहाँहरूको हेल्प लिएर चाहिँ इन्जुर्ड पर्सनहरूलाई चाहिँ खुला मैदानमा लगेर जाने होइन अनि त्यो पछाडि चाहिँ उहाँ इन्जुर्ड भएको पर्सनहरूलाई चाहिँ थ्री क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गर्ने अनि जसलाई चाहिँ फर्स्ट एड मात्र जरुरी छ उहाँलाई
चाहिँ
जुनलाई चाहिँ फर्दर ट्रिटमेन्ट निडेड छ राख्ने र जुन चाहिँ सिरियस हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै लाइफ चाहिँ ठिकै कन्डिसनमा छ उहाँलाई चाहिँ क्याटेगोरी सीमा राख्ने
उहाँलाई
चाहिँ फर्दर ग्रुप डी र ग्रुप सीको चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ लगाउने र ग्रुप सीको जसको लाइफ चाहिँ फिटेनिङ कन्डिसनमा छ उहाँलाई चाहिँ इमर्जेन्सी कल गरेर चाहिँ हस्पिटल अरू हस्पिटलहरूमा चाहिँ रिफर गर्ने जो इन्जुर नहीं है वो लोगों को आम उसकी मदद से खुला मैदान में लेकर जाएंगे जो जो पर्सन इन्जुर हो हेल्प लीएर जो इन्जुर वहां खुला मैदान में लगे जाने शुरू में इन्जुर पर्सन थ्री कैटेगोरी में डिवाइड करने अ ग्रुप ए में अब एवटा कर्नर में जब फर्स्ट एड मात्र निडेड वहां राखने
White cap, describe the situation. White cap. सारी कैप पहन लो अपनी अपनी जल्दी
हाम्रो सिचुएसन भनेको चाहिँ हाम्रो एकजना साथी चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँको खुट्टा एम्पुटेसन गर्नुपर्ने उहाँ चाहिँ डिप्रेसनमा जानुभएको छ तिम्रो त एक्सिडेन्ट भएर खुट्टा काटेको छ अब तिमी कसरी हिँड्छौ मलाई लाग्दैन तिमीले आफ्नो नर्सको पढाइ पुरा गर्न सक्छौ एउटा मात्रै खुट्टा सुन्नु त आकृति
होइन
टेक्नोलोजीहरू राम्रो आएको छ नि त, अनि तिमीले आर्टिफिसियल लेग लाएर भए पनि हिँड्न सक्छौ अनि आफ्नो पढाइलाई सधैँ कम्प्लिट गर्न सक्छौ अनि अब ह्याप्पी लाइफ जिउन सक्छौ। त्यसो मैले राखेँ कि हामी तिमीसँग सबै सुन्ने अब आतेर कहाँ हुन्छ त भन्ने सबै सुन्ने तिमीलाई त्यही त नडर।
उसको क्लियर करो, उसके बाद में फीलिंग्स इमोशंस, उसके बाद में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्रिएटिविटी ला सकती है उसमें, फिर बेनिफिट्स क्या है, कितनी भी डिफिकल्ट नेगेटिव सिचुएशन हो बट देयर इज अ हिडन बेनिफिट, ब्लैक सिचुएशंस व्हाट आर द डिफिकल्टीज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द नेगेटिविटीज, स्टडी देम एंड लास्ट ब्लू एक्शन प्लान। ओके, ओम शांति।